तो आप ये जानना चाहते हैं कि जैसा मनुष्य कर्म करता है वैसा ही उसको फल मिलता हुआ नजर नहीं आता। कोई बुरे कर्म कर रहा है फिर भी जो है वो सुखी जीवन व्यतीत कर रहा है, और जो पुण्य कर्म कर रहा है वो भी दुखी जीवन व्यतीत कर रहा है। सत्पुरुषों का जो कर्म फल का सिद्धांत है, जैसा कि शास्त्र में वर्णन किया गया है, और महाराज जी ने भी इस प्रश्न का उत्तर एक पत्र के माध्यम से एक प्रेमी को दिया था, और वो पत्र गुरुदेव ने कहा में कर्म विज्ञान के रूप में छपा हुआ है। उसका हेडिंग है वहां पर कर्म विज्ञान, उसको आप पढ़कर देखिएगा, वहां पर इसका निर्णय दिया हुआ है। वहां महाराज जी गुरुदेव ने कहा पुस्तक, तो महाराज जी ने वहां लिखा है कि ऐसा अक्सर देखने में आता है कि जो शुभ कर्म कर रहा है फिर भी वो तंगी हालत में जीवन व्यतीत कर रहा है, और जो पाप कर्म कर रहा है फिर भी उसका सुखी जीवन व्यतीत हो रहा है। उन्होंने कहा है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य वर्तमान जीवन में पूर्व जन्मों के कर्मों के फल भी इसी जन्म में भोगता है। तो यदि कोई पाप कर्म करके भी सुखी जीवन व्यतीत कर रहा है तो ये किसी उसके पूर्व पुण्य कर्मों का फल है जो इस समय उदय हो गया है प्रारब्ध के रूप में। इसी प्रकार जो पुण्य कर्म कर रहा है लेकिन दुख भोग रहा है, तंगी हालत में जी रहा है, यह भी इसी कारण है कि पूर्व में उसने कुछ पाप कर्म किए हैं जिसकी सजा के रूप में, प्रारब्ध के रूप में वो इस जन्म में वो भोग रहा है। लेकिन वर्तमान में जो उसने पुण्य कर्म या पाप कर्म किए हैं इसकी सजा भी या इसका सुखरूप फल भी वो भविष्य में जरूर भोगेगा, वो उसका निरर्थक नहीं आएगा। तो इसीलिए ये सिलसिला हमको ऐसा प्रतीत होता है कि कर्म का फल व्यक्ति को सही सही नहीं मिल रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। तभी तो कहते ना कि ईश्वर के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। हम चाहते हैं कि अभी इसने मुझे दुख दिया, अभी इसको भी दुख मिलना चाहिए। कई बार देखा होगा कोई कत्ल कर देता है झूठ बोल के और प्रमाण मिटा के वो जेल से कोर्ट से छूट जाता है, छूट जाता है वो। और किसी ने कत्ल नहीं किया होता है फिर भी उसको सजा हो जाती है। तो देखने में तो ऐसे ही लगता है कि जैसा जो कर्म कर रहा है उसको फल वैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन ये ईश्वर का विधान है, वहां पर कमी नहीं हो सकती। हमें धोखा कहाँ होता है इस विज्ञान को भी सीखना बहुत जरूरी है। हम क्या करते हैं, हम शारीरिक जीवन देखते हैं, इस देह की आयु है, इस देह के द्वारा कर्म हुए हैं और इस देह के द्वारा ही उसका फल भोगा जाएगा, यही तो हमारा दृष्टिकोण है। तो हम देह को देखते हैं और कहते हैं कि जिस देह से दुष्कर्म हुआ उसी देह को सजा मिलनी चाहिए। अब ये देह मर गई तो इसको सजा कहाँ मिली फिर, हम तो देह ही देखते हैं ना। लेकिन सत्पुरुष देह नहीं देखते, वो जीव देखते हैं। अरे मुर्दे को आपने सजा दे दी, एक पत्थर ने किसी का सिर फोड़ दिया, आपने उस पत्थर को पीट के चार टुकड़े कर दिए, तो कोई क्या कहेगा, कैसा मूर्ख आदमी है, देखो पत्थर को सजा दे रहा है। वो तो जड़ वस्तु है, उसको क्या सजा देना? आप कहोगे या नहीं कहोगे? उसी प्रकार यदि शरीर को सजा दिया है तो शरीर तो जड़ वस्तु है, ना ये पाप करता है, ना ये पुण्य करता है, ना ये सजा भोगता है। देह और मन के द्वारा सजा तो जीव भोगता है ना, दुख तो मुझे होता है, सुख तो मुझे होता है। तो जो सुखी और दुखी हो रहा है, सजा का हकदार या इनाम का हकदार तो वो है ना, तो उसका जीवन देह के साथ खत्म कहां हो रहा है? उसने यदि अपने आप को देह समझकर, मन के वशीभूत होकर, मन की डिजायर के वशीभूत होकर इस देह से कोई कर्म कर दिया, ये तो ऐसे ही समझो जैसे मैंने हथौड़े से किसी का सिर फोड़ दिया, तो सजा हथौड़े को दोगे या हथौड़ा चलाने वाले को दोगे? आज जो विचार करके देखो, ये कोई एग्जाम्पल नहीं है जो ऐसी आपने बस कह के छोड़ दी, ये गहरे मनन की चीज है, क्योंकि सतपुरुष वास्तविकता बयान कर रहा है, वो आपको किससे कहानी या उदाहरण नहीं सुना रहा है, ये मेरी वास्तविकता है कि मैं जीव हूं, मैं जिंदा वस्तु हूं, मैं जानने वाली शक्ति हूं, मेरे अंदर होश है। तो जिसमें होश है उसी को तो सुख दुख का असर होगा उसके ऊपर, जड़ वस्तु पे सुख दुख का असर कहां होगा? तो सुख दुख का असर मेरे ऊपर हो, जीव के ऊपर हो रहा है जो इस देह का मालिक बना बैठा हुआ है। मालिक भी नहीं, गलती से वो देह ही बना घूम रहा है, मालिक भी नहीं समझता अपने आप को, तो देह ही समझता है। तो इसलिए सारा व्यवहार उसका जो है वो देह करके ही होता है, सारे निर्णय भी उसके मैं देह हूं इस करके ही होते हैं, इससे ऊपर मनुष्य की सोच नहीं होती है, किसी भी सांसारिक व्यक्ति की, कहीं का भी हो, वो किसी भी देश का हो, किसी भी धर्म संप्रदाय का हो, स्थिति उसकी यही है। लेकिन जो सत्पुरुष बयान कर रहा है हमारे बारे में, हमको सिखाना चाह रहा है, वो तो इस ज्ञान का प्रारंभ ही जीव करके कर रहा है। अरे गुरु धारण किया है तो वो जानते हैं कि देह ने धारण नहीं किया, ये जीव ने धारण किया है। दुखी जीव की सुन पुकार, सदगुरु आए जगत उद्धार। दुखी जीव की पुकार सुनकर सदगुरु उसका जगत के दुखों से उद्धार करने के लिए आया है, देह का उद्धार करने नहीं आया। महाजी कहते प्रेमी देह की गति तो यही है कि अग्नि में जला दी जावे, पानी में बहा दी जावे या मट्टी में दबा दी जावे, ये देह की गति है। तो इस मुर्दे की गति कर रहे हो क्या आप? कोई मरता है तो देह तो जला देते हैं, गति पंडित मौलवी किसकी करते हैं? जीव की करते हैं ना, कहते हैं जीव दुखी है, कहते हैं जीवात्मा दुखी है, अभी वो भूखी है, प्यासी है, आपसे कहते हैं कि उसको खाने के लिए पंडित को ये खिलाओ, उनके पास पहुंच जाएगा। सारा सारा कर्मकांड जीव के वास्ते है ना, देह के वास्ते कर्मकांड का है। देह का भी कर्मकांड हम इस वास्ते करते हैं कि जीव को दुख ना पहुंचे। कुछ लोग कहते हैं कि जीव इस जब तक ये जल ना जाए, जीव उसको देह को अपनी देखता रहता है, तो उसकी दुर्गति ना करें भाई, जीव को दुख पहुंचेगा। जितनी भी बातें हैं वो जीव के लिए हैं, सारा कर्मकांड जीव के लिए है, देह के लिए नहीं है। सब जानते हैं कि देह जड़ है, इसको तो घी में जला दो या तेल में जला दो, इस पे देह पे क्या असर पड़ेगा उसका? चंदन में जला दो, तो हम जो कंफ्यूज कर जाते हैं और हमारी बुद्धि के जो निर्णय होते हैं, क्योंकि हम संसार में पले हैं ना, अध्यात्म विद्या हमने सीखी ही नहीं, गुरु बना भी लिया उसकी बात समझने की कोशिश ही नहीं की, मोटी मोटी बातें सुन लें, दो चार उसमें से धारण कर लें और ठप्पा लगा लिया, मैं धर्मात्मा हूं, धर्म का पालन करने वाला हूं, धर्म की समझ ABCD भी नहीं आई। तो यदि कोई व्यक्ति सारी संताविलास पढ़ जाए, सारी वाणी श्रवण कर ले, सारी गीता पढ़ जाए, लेकिन इस बात पर ध्यान ना दे, तो सारे गीता के अर्थ गलती कर लेगा वो, सारे संताविलास के अर्थ गलती कर लेगा वो, समझ ही कुछ नहीं आएगी उसे। तो इसीलिए महाराज जी ने इस चीज को कई जगह बड़ा स्पष्ट समझाया है। जीवन सार सिद्धांत में महाराज जी ने लिखा है, नहीं लिखा है, जीव को देह क्यों मिली? अरे जीव को देह मिल रही है, इसका मतलब देह जड़ वस्तु है और जीव को दी जा रही है। साफ हुआ नहीं हुआ? मुझे मोबाइल क्यों मिला? अरे मैं जिंदा वस्तु हूं, मुझे मिलना है, मोबाइल जड़ वस्तु है उपयोग के लिए। बात है नहीं? तो जीव को देह दी जा रही है, ईश्वर उसको देह प्रदान कर रहा है। जीव को क्यों प्रदान कर रहा है? जीव को जरूरत क्यों है देह की? महाराज लिखते हैं कि ख्वाहिश के कारण, कि जीव के अंदर जिस समय उसने पुरानी देह का त्याग किया, जिसको हम मृत्यु कहते हैं, तो कामना का बंडल लेकर वो विदा हुआ था उस देह से। और कामना का बंडल कायम था, वो मन के अंतर्गत था, जिसको हम सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। तो स्थूल शरीर तो जो पांच तत्व का है वो तो खत्म हो गया, भस्म हो गया, उसकी गति तो हो गई, लेकिन जीव के साथ मन अभी भी बंधा हुआ। सारे संस्कार, सारे कर्म फल, सारी वासना उसकी मन के अंतर्गत सुरक्षित है। तो अब ईश्वर उसको नई देह प्रदान कर रहा है, इसी कर्म फल को भोगने के लिए जो भोगना है उसने, और इन्हीं संस्कारों का सुख या दुख उठाने के लिए, और इन्हीं कामनाओं का भी सुख या दुख उठाने के लिए। किसी की कामना ये अंदर ये पैदा हुई कि मैंने ईश्वर प्राप्ति करनी है, ये इच्छा लेके कोई मरा तो उसको ऐसी परिस्थितियां ईश्वर देगा या नहीं देगा कि ये इच्छा उसकी पूरी हो? विचार करके देखिए। तो महाराज लिख रहे हैं कि ख्वाहिश के कारण उसको दे दी जा रही है। अब मैंने ये देखना है कि मेरा कल्याण किस ख्वाहिश को करने में, किस इच्छा को करने में मेरा कल्याण है। किसी को बदसूरत बीवी मिल गई, मान लिया इस जन्म में, और सारी जिंदगी यही सोचता रहा काश मुझे सुंदर स्त्री मिली होती तो कितना आनंद रहता, मान लिया डिजायर है, पल लगी उसके मन के अंदर। अब ये जो 20 साल 30 साल ये डिजायर पालता रहा, तो मरते वक्त उसको यही इच्छा आ गई कि सुंदर बीवी नहीं मिली, तो अगले जन्म में सुंदर बीवी तो मिलेगी उसको, पक्की बात है। लेकिन उसकी दुर्दशा क्या होगी ये तो सोच रहा कि एक वासना थोड़ा पली होगी, पता नहीं कितनी इच्छाएं उसके पली होंगी, कैसे भोगवादी संस्कार होंगे, वो तमोगुणी भी हो सकते हैं, वो रजोगुणी भी हो सकते हैं, सतोगुणी तो हो नहीं सकते, ऐसे व्यक्ति के सतोगुणी संस्कार तो हो नहीं सकते, जो भोग वस्तु के लिए जो है इच्छा लेके संसार से विदा हो, वो सतोगुणी कहाँ होगा? सतोगुणी तो पहचानी है, वो ईश्वर प्राप्ति की इच्छा लेके शरीर का देह का त्याग करता है कि प्रभु इस जन्म में तो आपके दर्शन नहीं हो सके, ये जन्म तो मेरा बेकार चला गया, अभी अगला जन्म बेकार ना जाए प्रभु ऐसी कृपा करना, तो इसी डिजायर को लेकर विदा होगा संसार। तो उसको जब नई देह मिलेगी उस जीव को, तो मन यही तो होगा साथ में उसके, तो मन के संस्कारों के हिसाब से उसके अंदर विचारों की तरंगे उठेंगी, और वैसी परिस्थितियां ईश्वर चारों तरफ प्रदान करता है। भक्तों का संग मिलेगा, गुरु का संग मिलेगा, शास्त्रों को स्वाध्याय का, शास्त्रों के श्रवण का मौका मिलेगा, बुद्धि होश में बनी रहेगी। तो इस जन्म में मैंने संस्कार बनाए, अगले जन्म में काम आया नहीं आया वो, ये तो ठीक ऐसी समझो जैसे कि मैं बिजनेस करता हूं, सर्विस करता हूं, मान लिया 10% हर महीने निकाल के मैं बैंक में जमा करता हूं भविष्य के लिए, तो जब बुढ़ापा आता है तो पैसा कमाने की तो शक्ति रहती नहीं, लेकिन जो बैंक बैलेंस इकट्ठा किया वो काम आता नहीं आता, मेरा ही इकट्ठा किया हुआ है, तो संस्कार भी ऐसे ही है, संस्कार भी मेरा बैंक बैलेंस ही तो है जो इस देह की मृत्यु के साथ भी खत्म नहीं होता, वो मेरा सुरक्षित रहता है मेरे ही मन के अंतर्गत। तो बताओ मैं कौन सा बैंक बैलेंस तैयार करूं, जो ही खत्म हो जाए वो तैयार करूं, या जो अगले जन्म में भी काम आए वो तैयार करूं। तो जीव का जीवन कंटिन्यूअस है, इसमें ब्रेक नहीं है। और जीव जो जीवन जीता है वो देह के साथ जीता है, जीव के साथ देह हमेशा ही रहती है। इसलिए महाराज जी से जब पूछा गया, महाराज जी ये चीज बताइए कि जब देह की मृत्यु होती है तो क्या जीव दूसरी हालत में कुछ समय तक रहता है या तुरंत ही उसको नई देह मिल जाती है? तो महाराज जी कहते हैं, प्रेमी बीच में कोई टाइम गैप नहीं होता, बीच में कोई ऐसा समय नहीं होता कि जीव बिना शरीर के रहे, तुरंत ही उसको नई देह मिल जाती है। अब चाहे वो इतनी सी हो चाहे इतनी बड़ी हो, वो बात की बात है, लेकिन जीव जब तक है तब तक देह के साथ ही रहेगा। तो अब बताइए कि मैं मृत्यु से कितना डरता हूं, यदि मैंने अपना ही विज्ञान सीखा होता तो मृत्यु का भय तो मेरे अंदर नहीं होता। महाराज जी तो कह रहे हैं, प्रेमी मौत को याद रख, मौत को याद रखना सत्विचार है। वो क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि देह की सीमा तो एक है ना जीवन की, किसी की 5 वर्ष है, किसी की 10 वर्ष है, किसी की 50 है, किसी की 80 है, पता नहीं किसी की क्या है। तो इस देह की जो सीमा है, समय सीमा है, इसका मैं उपयोग कर लूं, वेट नहीं करूं, अरे जब 60 साल की उम्र होगी तब देखूंगा, अभी तो जरा दुनिया का जरा मैं सेट कर लूंगा अपने, वो 60 साल का इंतजार नहीं करता है। मृत्यु तो 30 साल में भी हो जाती है, एक्सीडेंट हो गया फट हो गए। तो जो संस्कार बनाने हैं तूने आज ही उसकी शुरुआत करनी है। एक दिन भी तू क्यों व्यतीत कर रहा है? कल का दिन तुझे देखने को मिलेगा भी या नहीं मिलेगा तुझे पता है क्या? तो इसलिए मनुष्य जन्म का एक दिन भी बर्बाद करने के लिए नहीं है, यदि बुद्धि में होश है तो। जो बेहोश लोग हैं, मदहोश हैं, महाजी कहते थे वो मदहोश, जो अपने आप को देह करके जी रहे हैं, मैं देह हूं, इससे ऊपर सोची कुछ है नहीं उनकी, इसको मदहोश कहते हैं। अर्थात ये व्यक्ति गहरे नशे में जी रहा है। मद कहते हैं नशे को, जैसे शराब का नशा होता है ना, कि हम सब जानते हैं कि शराबी की बुद्धि बेकार हो जाती है, ना उसकी बात पर कोई विश्वास करता है, ना उसके चरित्र पर कोई विश्वास करता है, किस समय क्या कर बैठेगा पता ही कुछ नहीं। जो अपने ही होश में नहीं है उसको दूसरे का क्या होश रहेगा? तो जिस प्रकार शराबी का कोई पता नहीं है, उसी प्रकार जो मदहोश है उसका भी कुछ पता नहीं, जो देह के नशे में कि मैं देह हूं, इसके ऊपर सोची कुछ नहीं है उसकी। तो सत्पुरुष हमको पहले होश में ला रहे हैं। ये कर्म का सिद्धांत सीखना है तो पहले अपना सिद्धांत सीखो कि तुम कौन हो, तब ये सिद्धांत समझ में आएगा। तो महाराज जी कह रहे हैं, प्रेमी तू जीव है, जो सुख भोग रहा है, जो दुख भोग रहा है, और किसके द्वारा भोग रहा है? मन के अंदर इच्छा उठती है, तेरे संस्कार जैसे तूने पास्ट में बनाए हैं, और उस इच्छा की पूर्ति देह रूपी मशीन के द्वारा और संसार रूपी मटेरियल के द्वारा तू पूरी करता है। यही तो मैं करता हूं, लोग भी मेरे लिए मटेरियल है, इच्छा पूर्ति का साधन है। तो जीव जो है उसका अपना ही मन है, वहां संस्कारों के कारण वैसी डिजायर उठ रही है जैसे उसने बनाए पास्ट में, और इस देह का उपयोग करके, संसार का उपयोग करके उस इच्छा को वो पूरी कर रहा है। जब इच्छा पूरी करती है, पूरी होती है तो जीव सुखी होता है, सुख का अनुभव करता है, और जब इच्छा पूरी नहीं होती है तो दुख का अनुभव करता है। ना मन दुख का अनुभव करता है, ना देह दुख का अनुभव करती है, ना मेटेरियल सुख दुख का अनुभव करता है। तो जो सुख दुख का अनुभव करता है वो मैं हूं। तो इसीलिए अध्यात्म मार्ग क्या है? अध्यात्म मार्ग में इन तीन चीजों को आपको अलग अलग करके इसका वर्णन किया जाता है। तो अलग अलग करके वर्णन इसलिए किया जाता है ताकि आप समझ सकें अपनी स्थिति को और अपनी बीमारी को भी। तो जीव परेशान किस कारण से है? मान लिया देह के द्वारा वो पाप कर्म कर रहा है, तो अब जो पाप कर्म हो गया तो उसका फल दुख भोगेगा नहीं भोगेगा जीव? तो जीव परेशान किस कारण से है? ये पाप क्यों हुआ है? ये मन के कारण और तन के कारण ही तो पाप हुआ है। तो जीव यदि पाप से मुक्त होना चाहता है तो इसको मन और तन से मुक्त होना पड़ेगा। जीव आनंद की तलाश में है, जीव को आनंद चाहिए। जीव शांति की तलाश में, जीव को शांति चाहिए। और हमेशा का जीवन चाहिए, इटर्नल लाइफ चाहिए उसको, मौत नहीं चाहिए जीव को, उसको इटर्नल लाइफ चाहिए। तो शास्त्र कह रहे हैं कि सच्चिदानंद जो है, जो सत है, जो कभी परिवर्तन नहीं होता, जिसकी मौत नहीं होती, उसका नाम सत है। और चित कहते हैं जो होश में है, वो जड़ वस्तु नहीं है, होश में है, निरंतर होश में है। जैसे जी मैं होश में हूं ना, ऐसी ईश्वर भी होश में है। और तीसरा गुण क्या है उसका? आनंद रूप है। मैं सुखी और दुखी होता हूं, और सुख दुख से ऊपर की जो अवस्था है उसको आनंद आनंद कहते हैं, उसको शांति कहते हैं। तो ईश्वर में, ईश्वर क्या है? सत चित आनंद है, सच्चिद आनंद है। तो मुझे वही तो चाहिए। और इस प्रारब्ध की रचना को, और ये जो देह है जो जीव को मिली हुई है, इसका संचालन प्रारब्ध के अनुसार वो ईश्वरी सत्ता कर रही है। मैं नहीं कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं? मैं तो मन की डिजायर पूरी करने के लिए कर्म कर रहा हूं। मेरे अंदर तो यही भाव है ना, मैं तो यही कर रहा हूं, मुझे पता है मैं यही कर रहा हूं। लेकिन देह को तो मैं नहीं चला रहा हूं, सो जाता हूं। देखो कौन चलाता है आपको? आप तो पूरी तरह से बेहोश हो जाते हैं ना, तो देह की रक्षा कौन करता है? आपके ही प्रार्थ के अनुसार देह की रक्षा ईश्वर शक्ति कर रही नहीं कर रही? तो जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम कर रही है, आपके जीवन की रक्षा कर रही है, उसको आप भूले बैठे हो। देह मद के कारण, देह मद के कारण ऐसी सत्ता को भूले बैठे हो जो तुम्हारी सबसे प्रिय वस्तु देह है उसकी रक्षा कर रही है। दुनिया ये काम नहीं कर रही आपके लिए, माता पिता भी ये काम आपके लिए नहीं कर रहा, ये काम अंतर्यामी ईश्वर कर रहा है। तो जब अपने बारे में आप सोचते हो सही कि मैं जीव हूं जो जिंदा वस्तु है, और ये समझते हो इस विज्ञान को कि हां बात तो ठीक है, मन के अंदर मेरे डिजायर उठती है, चाहे घूमने की हो, चाहे सिनेमा देखने की हो, चाहे खाने पीने की हो, जिसमें मेरे मुझे सुख नजर आता है, जैसे मेरे संस्कार बनाए हुए, मैंने आदतें बनाई हुई हैं, स्वभाव बनाया हुआ है, तो वो डिजायर जब उठती है तब मैं देह के द्वारा पूरी करके खुश होता हूं। और नहीं पूरी होती है तो दुखी होता हूं। तो सीधा सीधा जीव को नजर आ रहा है कि डिजायर मन में उठ रही है, जहां उसके डिजायर उठती है मन कहते हैं उसको, और जिसके द्वारा पूरी होती है वो उसको तन कहते हैं। और ये डिजायर पूरी तो संसार में करते हो ना, तो संसार साधन है, संसार आपके लिए साधन है, लोग भी साधन है और वस्तुएं भी साधन है। पूरा ब्रह्मांड आपके लिए आपकी डिजायर पूरी करने का साधन है, और इस ब्रह्मांड का आपके लिए कोई यूज नहीं। तो बताइए कि जब जीव को शांति चाहिए, मृत्यु नहीं चाहिए, दुख नहीं चाहिए, आनंद चाहिए, आनंद कहते हैं उसे जिसमें परिवर्तन नहीं होता, जो सदैव बना रहता है, एक जैसा रहता है, उसको आनंद कहते हैं। तो कहां मिलेगा? है संसार में। मन की किसी डिजायर में जो देह के द्वारा पूरी होती हो, जो देह के द्वारा पूरी होती हो, संसार में क्या ऐसी चीज में आनंद हो सकता है क्या? संसार परिवर्तनशील, देह परिवर्तनशील, मन तेरा परिवर्तनशील, सब में तो चेंजेस हो रही हैं, तो इसमें आनंद कैसे रह सकता है? जबकि आनंद उसे कहते हैं जो सदैव एक जैसा रहता है, उसे आनंद कहते हैं। और सदैव एक जैसा कौन रहता है? ईश्वर। इसलिए आनंद कहाँ है? वो ईश्वर में है। और जिस जीव ने भी उस आनंद को भोगा, ईश्वर के आनंद को, उसको हम सत्पुरुष कहते हैं, उसको हम सदगुरु कहते हैं, उसको हम अवतार कहते हैं। और दुनिया में जितने भी अवतार हुए, जितने भी शास्त्र उनके द्वारा प्रकट हुए, जितना ज्ञान प्रकट हुआ, सब पढ़ के देखिए, वो एक ही बात कह रहे हैं कि जगत में आनंद कहाँ है, देह में आनंद कहाँ है। देह में तो कर्म है और कर्म फल है, कर्म फल वो सुख और दुख रूप होता है, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, सुख आता ही रहता है, हर सुख दुख में बदल जाता है, सुख से ही दुख उत्पन्न होता है, ये सिद्धांत है, समता विलास में साफ लिखा है, सुख से ही दुख उत्पन्न होता है। तो कुदरत ने मुझे यदि ज्यादा संपत्ति, ज्यादा सफलता जीवन में देवी दी और उसके द्वारा मैंने सुख भोगे, तो सोच लो कि भविष्य के लिए तुमने कितना बड़ा दुख का भंडार तैयार कर लिया, क्योंकि जितना सुख भोगा है उतना ही अब तुमको दुख भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति द्वंद्व रूप है, ईश्वर ने इस प्रकृति की रचना द्वंद्व रूप की है, आपने उतना ही दुख भविष्य के लिए अपने तैयार कर लिया। जैसे कोई चोरी करके 1 लाख की चोरी कर ले और खूब सुख भोग ले, तो आप क्या कहते हो? सोख ले बेटा, सुख भोग ले, अब इसका फल भोगेगा दुख रूप ना, भविष्य में तब पता लगेगा तुझे। तो जितना सुख भोगा है उसने दुख तैयार कर लिया भविष्य के लिए। एग्जैक्टली यही स्थिति है आपकी, क्योंकि सुख से ही दुख उत्पन्न होता है, साफ साफ लिखा हुआ है, हर सुख दुख में बदल जाता है, सिद्धांत पढ़े तो समता विलास के अंदर, हम भूल जाते हैं इसको, सुख भोगने के चक्र में इस चीज को भूल जाते हैं। इसलिए मनुष्य जन्म आपको सुख दुख में सम रहने के लिए मिला है, सुखी होने के लिए नहीं मिला है। ये जड़ बुद्धि लोग ऐसा सोचते हैं कि ये जीवन सुखी होने के लिए मिला है, जितना पुरुषार्थ सुख प्राप्ति के लिए करूंगा उतना सुख भोग लूंगा, ये जड़ बुद्धि लोगों की थिंकिंग है, होश वाली बुद्धि की थिंकिंग नहीं है। तो होश वाली बुद्धि किसकी होती है? जो ईश्वर से जुड़ी होती है, क्योंकि होश ईश्वर में, ईश्वर में होश गुरु में है। तो इसीलिए जो शास्त्रों का स्वाध्याय करता है और अपने और जीव विज्ञान को समझता है, वो जानता है क्या ठीक है क्या गलत है, जिसको हम विवेक कहते हैं। इस विवेक के प्रकाश में वो सांसारिक जीवन व्यतीत करता है। तो उसके लिए महाराज लिख रहे हैं, प्रेमी यदि तूने सही कर्म करने हैं मनुष्य जन्म में आकर, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए तुझको? जो खोटे कर्म है, जो तू जानता है ये पाप कर्म है, अपने लिए तू होता है गाफिल है, लेकिन दूसरा जो करता है वो कहता है तू गलती कर रहा है, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, इसका मतलब तू जानता है क्या सही है क्या गलत है। तो जो तू जानता है गलत कर्म है, उसने तुझे उसको तूने कदापि नहीं करना। तो सबसे पहले जो गलतियां कर रहा है जिसका पता है तुझे, उस गलतियों को छोड़ दो, उसका तुरंत त्याग कर दो, अगली सीढ़ी बता रहे हैं वो, तू अच्छे कर्म करना शुरू कर, जो कि आप सत्पुरुषों के द्वारा सुनते हैं, महाजी के संत अरदास में सारे लिखे पड़े हैं, पांच नियम के रूप में। दुखी जीवों पर दया करना, उनकी मदद करना, प्रभु का सिमरन करना, सत्संग का श्रवण करना, शास्त्र का स्वाध्याय करना, अपने स्वार्थ के लिए नहीं जीना, दूसरों को, दूसरे के जो कष्ट हैं उसको दूर करने की कोशिश करना, अपनी इच्छाओं के बजाय दूसरों की इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करना जो मर्यादा में हो। तो इस तरह से सत्पुरुष कहाँ लगा रहा है आपको? सत्कर्मों में लगा रहा है। तो ये जो सत्कर्म करते करते क्या होता है, आपकी बुद्धि इस स्वार्थ से धीरे धीरे मुक्त होने लगती है। तो स्वार्थ से मुक्त होगी तो कहां लगेगी? परमार्थ में लगेगी, क्योंकि ये स्वार्थ से मुक्ति की राह जो पकड़ी है इसने, इसी बात से तो पकड़ी है कि मैंने ईश्वर की राह पकड़नी है। तो स्वार्थ से जैसे जैसे मुक्त होगी तो परमार्थ में लगेगी या नहीं लगेगी? तो ऐसी बुद्धि जो परमार्थ में लगी हुई है वो सुख दुख के लिए नहीं जीती है, वो ईश्वर प्राप्ति के लिए जीती है, आनंद के लिए जीती है। उसे ईश्वर वाला आनंद चाहिए जो उसका निज आनंद है, क्योंकि ईश्वर का संग जीव का कभी नहीं छूटता। जैसे जीव का संग देह से कभी नहीं छूटता, मौत भी जो है एक टेम्परेरी है लेकिन फिर देह मिल जाती है उसको, उसी प्रकार जीव का ईश्वर से भी संबंध नहीं छूटता, लेकिन देह में सुख दुख है, ईश्वर में आनंद है। देह में मृत्यु है, ईश्वर में जिंदगी है। तो जो होशियार बुद्धि है, जो सतबुद्धि है, वो उस परमानेंट चीज के लिए जीती है जिसको हम ईश्वर कहते हैं। तो उसके जो कर्म है धीरे धीरे, पहले खोटे कर्म का त्याग करती है, फिर सत्कर्म करने की कोशिश करती है, फिर निष्काम कर्म करने लगती है कि मैंने दान भी कर दिया, किसी का दुख दूर भी कर दिया, प्रभु तूने ही तो दूर किया, दुनिया को किसी व्यक्ति को तूने ताकत दी कहां है कि वो कुछ कर सके, सारी सृष्टि को तो तू चला रहा है। सकल जगत का कर्ता जानो एक भगवान, देखो वाणी क्या कह रही है, सकल जगत का कर्ता जानो एक भगवान, आप अकर्ता हो रहो यही सार है ज्ञान। सारे ज्ञान का सार है कि तूने अकर्ता बनना है, तूने इतना होश में आना है, इतना होश में आना है, तुझको एक दिन पता लग जाएगा तू कभी कर्ता था ही नहीं। ये तेरी पूरी तरह से गलत फहमी थी, क्योंकि तू अपने आप को देह समझता रहा, क्योंकि देह से कर्म हो रहे हैं, प्रभु इस देह से कर्म करवा रहे हैं प्रारब्ध के अनुसार, इसलिए तू जो देह बनकर घूम रहा है, इसलिए तू गलती से ये समझता रहा कि मैं कर रहा हूं, जबकि तू ना देह कभी था ना कभी हो सकता है, इसीलिए कर्म ईश्वर देह से करवा रहा था, तूने करे ही कहां था। लेकिन एक गलती कि मैं अपने आप को देह समझ के कर्म कर रहा था, तो इसीलिए वो सारे कर्मों का फल भी मैं ही इतने जन्मों तक भोगता रहा। तो वर्तमान जन्म में वो अपनी इस स्थिति को तैयार कर लेता है जिसको कहते हैं निष्काम कर्म, कि देह से कर्म तो होते हैं मेरे, तब भी महाजी के देह से कर्म नहीं होते थे क्या? वाणी लिखी गई, संगत का निर्माण हुआ, शिष्य बनाए गए, उनका कल्याण हुआ, कितना काम हुआ देह से। लेकिन महाजी के अंदर कहीं दूर दूर तक ये भाव था कि ये मेरे कर्म है। महाजी कहते हैं प्रभु का बड़ा सख्त हुक्म है, जैसा वो करवा रहा है वैसा किया जा रहा है, वो मदहोश नहीं है, वो बाहोश है, 100% बाहोश है, वहां दूर दूर तक लेश मात्र भी वहां इच्छा नांगी वस्तु है ही नहीं, गायब है वहां पर। इसीलिए वो सत्पुरुष उस कर्म का फल भी नहीं भोग रहा है, वो परमानेंट ईश्वरीय आनंद में स्थित है, परमानेंट। और हम परमानेंट देह के सुख दुख में आ सकते हैं। तो इसीलिए जब तक इस विज्ञान के अनुसार नहीं सोचोगे, जो मेरा वास्तविक विज्ञान है, तब तक इस कर्म का कर्म फल का सही सही निर्णय कभी नहीं हो पाएगा। सत्पुरुषों ने मोटे रूप में ये सिद्धांत लिख दिए हैं, इनका वर्णन किया है, इसी वास्ते किया है ताकि आप अपने आप को जीव समझें और जीव समझकर निर्णय करें। यदि देह समझ के निर्णय करोगे तो इन बातों का सही से निर्णय आपकी कभी समझ में नहीं आएगा। आप पढ़ते रहोगे सुनते रहोगे इन बातों का, हाँ कहते तो हैं, लिखा है, पता नहीं कहीं नजर तो ऐसा आता नहीं ऐसा होता हुआ। ऐसे लोग शास्त्र का निर्णय कर, ऐसे सत्संग का निर्णय होता है। सारी जिंदगी यही एक ही निर्णय नहीं हो पाता उनका, पूरी जिंदगी अब बताइए अध्यात्म मार्ग पर यदि चलने का शौक है, यदि अपना कल्याण चाहिए, अपनी भलाई चाहिए, तो सीखना आपको यही पड़ेगा कि मैं जीव हूं जिसकी मौत नहीं होती है, मैं जीव हूं जिस पर सुख का असर होता है, जिस पर दुख का असर होता है, ना मन भोगता है ना तन भोगता है, भोगता मैं हूं। तो मैं इस अपने ही मन का अपने ही तन का मिसयूज क्यों करूं? संसार के भोग इकट्ठे करके उसके लिए जीना ये मनुष्य जन्म का दुरुपयोग है, ये मनुष्य जन्म का दुरुपयोग है। यहां आके पता लगेगा आपको कि वाणी ये क्यों कह रही है, मानुष जन्म सफल होवे जब प्रभु दाता चित्त आए, प्रभु के सिमरन कारणे ये दुर्लभ जीवन पाए। जो बुद्धि होश में है, जो जीव होश में है, उसके लिए यह दुर्लभ जन्म है। दुर्लभ का मतलब होता है जैसे कि एक बच्चा खिलौने से खेलता है, खिलौने की क्या कीमत होती है? खिलौने के मुकाबले में, पत्थर के मुकाबले में हीरे की बड़ी कीमत है। कहते हैं हीरा जो है यह दुर्लभ है। जैसे छोटे मोटे खिलौने के मुकाबले में, उसकी कीमत के मुकाबले में हीरे की कीमत जो है दुर्लभ कही आएगी, नहीं कही जाएगी। किसी बच्चे को हीरा मिल जाए कहेंगे तुझे तो दुर्लभ वस्तु प्राप्त हो गई। तो मुझको ये मानव देह मिल गई है, सत्पुरुष कह रहे हैं ये दुर्लभ मौका मिला है तुझे। हम कहते हैं खाक दुर्लभ मौका है, ये सभी को मिला हुआ है। गली गली मारे मारे फिर रहे हैं, कोई किसी को मार देता है दो मिनट में मर जाते हैं। कैसा दुर्लभ मौका है, दुर्लभ मौका है। तो वो मनुष्य है कहां जो चलते फिरते आपको मनुष्य नजर आ रहे हैं? शास्त्र तो उसको पशु कह रहा है। जिसकी बुद्धि में ये होश ही नहीं है वो तो शास्त्र में लिखा हुआ ये पशु है। उसका नाम आप बदल दीजिए, मानव पशु लग दीजिए नाम उसका, बस ये कर सकते हैं। ये मानव पशु है, जैसे कहते नहीं ये जंगली जानवर है, जानवर के पीछे एडजेक्टिव लगा दिया जंगली है, और घर में रहने वाले को घरेलू जानवर कह देते हैं। तो ऐसे ये भी कह दो ये मानव पशु है। पशु में यदि भेद है तो ये है, ये मानव पशु है, ये जंगली पशु है, ये घरेलू पशु है। एडजेक्टिव में अंतर है, पशुता एक जैसी है तीनों की। वो भी हिंसा करते हैं, ये भी हिंसा करते हैं, वो भी चालाकी करते हैं, ये भी चालाकी करता है। तो करनी से पता लगता है ये मनुष्य की करनी है या पशु की करनी। जो बुद्धि होश में ही नहीं है वो तो देह का के तो पशु ही है वो। तो तभी महाजी कह रहे प्रेमी पशु में और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है, दोनों के अंदर विकार एक जैसे हैं और दोनों के कर्म एक जैसे हैं। खाना पीना मैथुन ये सब जो भी क्रियाएं पशु करते हैं मनुष्य भी करता है, अंतर क्या है? बच्चे वो भी पैदा करते हैं, बच्चे ये भी पैदा करता है, बच्चे वो भी पालते हैं, बच्चे ये भी पालता है, वो भी मेहनत करके खाते हैं, शिकार करके खाते हैं, ये भी मेहनत करके खाता है, दोनों में तो कोई अंतर नहीं है। अंतर तब बनता है जब मनुष्य ईश्वर मार्ग पर चलने वाला बने, वो इस विज्ञान को सीख ले कि मैं जीव हूं, मेरी मृत्यु नहीं है, मैं मन और देह के बंधन में हूं, इन दोनों बंधनों से मैंने मुक्ति का प्रयास करना है, क्योंकि यही मुझसे पाप कराते हैं, यही मुझको सुख दुख के रूप में सजा दिलवाते हैं। तो इसीलिए जब मैं इस विज्ञान को सीखता हूं, इस कर्म विज्ञान को सीखता हूं, तब मैं सचेत हो जाता हूं, मुझे होश आ जाती है कि मैं कहां जिंदगी बर्बाद कर रहा हूं दो कौड़ी का पैसा कमाने के लिए। सत्पुरुष कितनी परमिशन दे रहे हैं पैसा कमाने की, वो कहते हैं गुजरान वाला प्रोग्राम, भूखा तो रह नहीं सकता, बच्चों को भी भूखा नहीं देख सकता, कहीं रहने का ठिकाना भी बनाएगा, तन है तो कपड़े भी ओढ़ेगा। तो कहते हैं जीविका चलाने के लिए, एक सादा जीवन व्यतीत करने के लिए कितना चाहिए तुझको, कमा ले उतना, बाकी वक्त तू कमाने में लोगों की नकल करके तो कमा रहा है तू, या भयभीत होकर कमा रहा है कि भविष्य के लिए तो मुझे रखना चाहिए, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इसीलिए वो कहते हैं ईश्वर विश्वास की कमाई कर, यदि तेरे अंदर ईश्वर विश्वास कायम हो गया तो तुझको ये भी पता रहेगा कि भूखा यदि मरना है मैंने तो दुनिया की कोई ताकत मुझे बचा नहीं सकती, मेरी कोई कमाई काम आ नहीं सकती। हिंदुस्तान के दो टुकड़े हुए, पाकिस्तान बना, हिंदुस्तान बना, तो किस किसकी कमाई काम आई, सब छोड़ के आना पड़ा, नहीं आना पड़ा, बड़े बड़े अमीर मर गए रस्ते में मर गए। तो तेरे भाग में है, तेरे प्रारब्ध में है, तेरे शरीर को उतना ही मिलेगा, तो उसके भरोसे क्यों नहीं जीता, उसके भरोसे क्यों नहीं जीता। लेकिन ये बात उसी के अंदर आती है जो सदगुरु के बताए रास्ते पर शास्त्रों के मार्गदर्शन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है, उसके अंदर ही यह होश बना रहता है कि मैं जीव हूं, मैं अपने ही मन अपने ही तन के बंधन में हूं, तो इसको वो बंधन करके देखता है, और दूसरा क्या, इसको वो साधन के रूप में देखता है, अपने ही मन अपने ही तन को साधन के रूप में, भोगों के वास्ते ये बंधन में है जीव, और मुक्ति के वास्ते ये मन और तन साधन है, इसी मन से वो संसार का स्मरण करने के बजाय करतार का स्मरण करता है, इस देह से स्वार्थ कर्म करने के बजाय वो परमार्थ कर्म करता है, लोगों की सेवा करता है, और करते करते फिर वो निष्काम हो जाता है, उसके अंदर कोई कामना मन में रहती ही नहीं, उसके संस्कार इतने गहरे हो जाते हैं कि कोई चीज संसार की उसको याद आती ही नहीं। एक प्रभु उसके देह का पालन कर रहे हैं, पहले भी कर रहे थे आज भी कर रहे हैं, लेकिन हमको विश्वास नहीं है, उसको 100% विश्वास होता है कि देह जितने दिन जिंदा रखनी है वो रखेगा। इसीलिए जो बचपन से ही होश में होते हैं वो कहां पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, महर्षि रमण ने कौन सा पैसा कमाया, रामकृष्ण परमहंस ने कौन सा पैसा कमाया, प्रारब्धवश उनको भी कुछ काम करने पड़ते हैं, पैसा कमाने का भी काम करना पड़ता है, लेकिन उनका मन वहां नहीं होता, उनका कोई स्वार्थ नहीं होता वहां पर, वो जानते हैं ये प्रारब्धवश देह से ये कर्म करने पड़ रहे हैं, उनका मन प्राण जो ईश्वर में ही लगा रहता है, तो वो बड़ी आगे की अवस्था है। लेकिन हम जहां खड़े हुए हैं, ये विज्ञान तो हमको सीखना ही पड़ेगा कि मैं कौन हूं, मेरा बंधन क्या है, ये कर्म विज्ञान क्या है, ऐसा क्यों होता है कि अच्छे कर्म करने वाले को हम सुख देखते हुए भोगते हुए नजर आते हैं, नजर आता है वो बुरे कर्म करने वाले को सुख भोगते हुए देखते हैं, और अच्छे कर्म करने वाले को दुख भोगते हुए देखते हैं, हमारी समझ में नहीं आता ये क्या क्या राज है इसके पीछे, ये सारी चीज आपकी समझ में आ जाती है कि बिना प्रारब्ध के बिना बुरे कर्म के हुए कोई जो है दुख नहीं भोग सकता, यदि कोई दुख भोग रहा है अच्छे कर्म करने के पश्चात भी, इसका मतलब उसने पास्ट में बुरे कर्म जरूर किए, और यदि कोई सुख भोग रहा है बुरे कर्म करते हुए भी वर्तमान में, तो सिद्धांत यही है कि उसने पास्ट में कुछ पुण्य कर्म किए हैं जिसके फल रूप में वो सुख भोग रहा है, तो वर्तमान के कर्म भी भविष्य में वैसा ही सुख दुख रूपी फल उसको देंगे, इससे वो बच नहीं सकता। तो आपको ये वहम नहीं रहता, आप अपने रास्ते पर चलते रहते हो, आप ईमानदारी से जीवन व्यतीत कर रहे हो, सरकार आपको परेशान कर रही है, लोग आपको परेशान कर रहे हैं, तो आप अंदर से समझते हो कि प्रभु तू मालिक है, तेरे यहां अन्याय है ही नहीं, कैसे हो सकता है कि मेरे ही पास्ट कर्म है जिसकी सजा मैं भोग रहा हूं। तो इसीलिए ईमानदारी से मैं उस ईश्वर विश्वास के साथ चलता रहता हूं। मेरी चाल बदलती नहीं है संसार को देखकर, कि संसार का रिवाज तो ऐसा है, मैं भी इसी चाल लाइन में लग गया। तो ये विज्ञान हमारे दिमाग से स्लिप नहीं होना चाहिए, इसलिए मनन की जरूरत होती है। बार बार इन बातों पर पढ़ के सुन के मैं गहरा विचार करता हूं, ये ईश्वर कह रहा है, मैं कैसे इसको टाल सकता हूं, ये सारा संसार ईश्वर चला रहा है, ये तो मेरा वहम है कि मनुष्य चला रहा है, ये सारा का सारा संसार जिसमें हम सब लोग भी शामिल हैं, ये ईश्वर के अधीन काम कर रहा है। तो मैंने अपने ही मन, अपने ही तन के बंधन से, इसके मोह से मुक्त होकर अंतर्यामी ईश्वर से दिल लगाना है, उसमें मन लगाना है, उसके लिए जीना है। जिसने इस चीज को शास्त्रों से सीख लिया, गुरु से सीख लिया, उसका जीवन सफल है। अन्यथा जिनका सफल जीवन भी संसार में नजर आ रहा है, ये पूरी तरह से उनका विफल जीवन है, ये बड़ी सजा पाएंगे, बड़ी बेचैनी सहन करेंगे, बड़ी बेचैनी झेलेंगे। इसलिए मैं इनकी नकल ना करूं, मैं सीधे रास्ते पर जिसको सतमार्ग कहते हैं उसका राही बनूं, चाहे सारी दुनिया अपने राह पे चले। ओम ब्रह्म सत्य।